ओम शांति। हम सब के बीच में प्यारे बाबा के यज्ञ की धरोहर अनमोल रतन दादी दीदियों के आज्ञाकारी वफादार ईमानदार बच्चा बड़ा होकर के दुनिया को देखने का खेलने का समय होता है। ऐसे में भाई साहब ने इस यज्ञ में आकर प्यारे बाबा के यज्ञ की धरोहर अनमोल रतन दादी दीदियों के आज्ञाकारी वफादार ईमानदार जब बच्चा बड़ा होकर के दुनिया को देखने का खेलने का समय होता है। ऐसे में भाई साहब ने इस यज्ञ में आकर इन आँखों से जो देखा ब्राह्मण संसार को देखा पालना पाई इन दादी दीदियों की पालना पाई खेला तो ज्ञान रत्नों से खेला। तो मैं भाई साहब को जो जानती हूँ बचपन से लेकर यज्ञ की ऐसी धरोहर अमानत बाबा ने बचपन से ही इस ब्राह्मण परिवार में आपको बुलाकर इस यज्ञ में यज्ञ रक्षक बनकर के बाबा ने आपकी पालना की एक ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य। 24 घंटे में अक्सर करके हम लोग एक घंटा मुरली को क्या करते हैं, एक घंटा मुरली को पढ़ते हैं और भाई साहब से पूछो 2400 घंटों आपके बुद्धि में मुरली का चिंतन मुरली का मनन मुरली का ही सोच। क्यों? क्योंकि आने वाले सभी भाई बहनों को कौन से ऐसे पॉइंट्स भेजे कौन से ऐसी विधि विधान पुरुषार्थ की उन्नति को पा सके। निरंतर ज्ञान रत्नों से खेलने का वो सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया। ऐसे बाबा के जो विशेष रतन और हमें ये भी पता है बाबा के द्वारा गुलजार दादी के माध्यम से जो संदेश आते थे बहुत सारे यज्ञ के जो कॉन्फिडेंशियल हुआ करते थे आपको उन कार्य में उस मैसेजेस आदि को लिखना समझना प्रिंट करना ये भी सौभाग्य कोई साधारण आत्मा को नहीं मिलता है। आप यज्ञ रक्षक बन करके इस यज्ञ को मुरली के माध्यम से पालना देकर न सिर्फ भारत में विदेशों में भी आपने बाबा की प्रत्यक्षता का डंका बजाया है। ऐसे भी देखो आज 5 जून है। 5 जून क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है। हम सभी अभी जागृत हो चुके हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन भाई साहब ग्राम विकास विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर या को चीफ वाइस चेयरपर्सन की भी सेवाएं देकर जो सबसे पहले कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान का आ गए। सबसे पहले क्या चाहिए पेट के लिए? रोटी चाहिए। वो रोटी कौन सी जानी चाहिए? जहर वाली नहीं। तो योगिक खेती का जो इन्होंने अभियान उठाया है न सिर्फ भारत के कोने कोने में मैं देखती हूँ गांव गांव में जा करके सबके पेट में शुद्ध अन्न सात्विक शुद्ध भोजन विषयुक्त भोजन को समाप्त करके एक ऐसा अभियान आपने छेड़ा है न सिर्फ भारत में विदेशों में भी इसका डंका बजाया है। तो ऐसे हर एक के पेट में शुद्ध सात्विक भोजन जाने का आधार यौगिक खेती। इसमें इतना सुंदर रिसर्च इतना सुंदर जिसको हमने देखा है कि समर्पणता गवर्नमेंट भी आत्मा परमात्मा की बातें हो सकता न माने लेकिन भाई साहब ने जो अभियान चलाया है हर सरकार इसको स्वीकार करने लग गई। तो ऐसे महान कार्य के लिए निमित्त बने हुए मधुबन वाले कौन? राजू भाई। हम लोगों को साल में एक बार मधुबन आने के लिए मिलता है ना पांडव भवन में कितने खुश होते हैं। और जो हमेशा मधुबन में रहने वाला होगा हाँ आप बताइएगा कितने सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे महान विभूति ज्ञान रत्नों की खान। आज का जो सब्जेक्ट भी कौन सा है? आज का जो सब्जेक्ट हमारा मुरली क्या है, खजानों की खान है। न जाने इतने खजाना भरा पड़ा इनको, कई बार कई बातें हमको समझ में नहीं आते ना, फट से हम भाई साहब को फोन करते हैं, भाई साहब इसका मीनिंग क्या है, ऐसे क्यों कहा बाबा ने, कह के तुरंत इसका बाबा भाई साहब के पास जवाब है। इतना खजाना इनके पास भरा पड़ा है। मुरली में जो वरदान आता है, सार आता है, भाई साहब ने ही शुरुआत करवाया था। तो ऐसे हम क्या कहे, शब्द ही नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ पवित्र आत्मा आज हम सबके सामने है, एक हाथ की ताली बजा करके। भाई साहब कटक के खास भाई बहने आए हुए हैं, तो पांडव भवन की बत्ती के लिए आप सबको अभी ज्ञान रत्नों से, मुरली से, स्मृति की जो गुह्यता से आप सबको श्रृंगारित करेंगे हमारे बाबा के यज्ञ के विशेष अनमोल रतन राजू भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। पांडव भवन में योग तपस्या करने का सभी बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? चारों तरफ गर्मी का माहौल है और बाबा ने ऐसे ऊंचे स्थान पर रखा है जो आप सभी प्रकृति का भी आनंद ले रहे हैं। सवेरे सवेरे बादल भी छू करके जाते हैं। उड़ीसा से मधुबन में शायद पहली बार भट्टी का चांस लिया है। पहले भी आए, दूसरी बार है? अच्छा, सभी तीन चार दिन में सब खजानों से भरपूर होकर के जाएंगे। बाबा की मुरली तो खजानों की खान है ही। जिस आत्मा ने मुरली का अच्छा अध्ययन कर लिया, उसका स्वरूप बन गई, उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। हम लोगों के पास तो और कुछ है ही नहीं, न दुनिया की पढ़ाई है, न दुनिया की बातों का पता है, लेकिन जब से मधुबन में आया, 72 में मधुबन आया, 73 में बाबा के साथ, अव्यक्त बाबा के साथ बैठने का, बाबा की महावाक्य नोट करने का अवसर मिल गया। पूरी पूरी रात बाबा के साथ बैठे, जो कुछ बोला सब कुछ लिख लिया, और फिर बाबा की पूरी मुरली का डिपार्टमेंट 76 में मिला। जब मैंने सिंधी भाषा सीखी, दादियों के अंग संग रहने लगे, तो 76 में फिर पूरा ही डिपार्टमेंट हाथ में आया। तब से लेकर के अभी तक जितना ज्ञान रत्नों का खजाना है, जो हमारे इस पूरे ब्राह्मण परिवार की पढ़ाई कहें, ज्ञान कहें, जिसके आधार से हमारा ये योगी जीवन है, पवित्र जीवन है, वो मुरली है। और मुरली से केवल सुन लेना या सुना देना इतना ही जरूरी नहीं है। अगर कोई ने उसका मनन चिंतन किया, उसका स्वरूप बना, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा महान परिवर्तन आ जाता है। चिंतन धारा को चेंज कर देता। एक गीत है ना हमारा, चिंतन की धारा को बदल लो तो जीवन बदल जाएगा। तो बाबा ने हमारे चिंतन को परिवर्तन करने के लिए ही इतने ऊंचे अच्छे महावाक्य हमारे सामने रखे। साकार बाबा की 33 वर्षों तक महावाक्य चले। जब बाबा अव्यक्त हुए तो 48 साल तक अव्यक्त रूप में पालना दी। कितनी गहरी मुरलियां अव्यक्त होने के बाद बाबा ने सुनाई, साकार में भी पूरे ज्ञान को स्पष्ट कर दिया। जितना ज्ञान हम सब सुनते हैं पढ़ते हैं, हमारे म्यूजियम में हमारे चित्रों में जो ज्ञान है, वो सारा स्पष्टीकरण साकार बाबा की मुरलियों में ही है। बाबा के समय ही बाबा ने जो भी ज्ञान का खजाना दिया, उसके आधार पर पहले 3-4 चित्र बनाए कराची के अंदर ही। सबसे पहले त्रिमूर्ति का चित्र बनवाया। परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं। अगर कोई बाबा को जानता है तो उसके कर्तव्यों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहते भगवान ही दुख देता, भगवान ही सुख देता, भगवान ही सब कुछ करता। उसने अपने कर्तव्य बताए, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं नहीं करता हूँ और कैसे करता हूँ, पूरा ज्ञान दिया और वो त्रिमूर्ति के चित्र में स्पष्ट किया। जब मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, तो जिस तन में आता हूँ उसको ब्रह्मा नाम देकर के ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना करता हूँ, मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना करता हूँ, यज्ञ की रचना करता हूँ, जिससे कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होता है, परिवर्तन होता है और सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। तो बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी क्या है और उसके ऊपर तुम आत्माओं का घर है, जो आज तक इतने वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद सब पढ़ने वालों को ये भी पता नहीं चला कि ब्रह्म एक तत्व है, ब्रह्म भगवान नहीं है, भगवान वहां रहता है, उनका निवास स्थान है और वहीं हम सब आत्माएं रहती हैं। कितना बड़ा ज्ञान हो गया, या तो कह दिया आत्मा ही परमात्मा है या कह दिया परमात्मा ही सब जगह है, लेकिन परमात्मा जब अवतरित हुए तो अपना सत्य पहचान दे दी, परिचय दिया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कब आता हूँ, कैसे मिलता हूँ, इससे आत्माओं का भटकना बंद हो गया। इधर उधर जो धक्के खा रहे थे, भटक रहे थे, बिना पहचान के ढूंढ रहे थे, अंदर से आवाज निकली, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सब कुछ मिल गया, बाबा मिला, सब कुछ मिला, सब खजानों का भंडारी ही मिल गया। जो कुछ दिया बाबा ने इतना था दिया, जो बाबा कहते जो आत्माएं भरपूर होती हैं उनकी कहीं भी आंख नहीं जाती, कहीं भी छोटी मोटी बातों में बुद्धि नहीं जाती, भरपूर है, संपन्न है, बहुत चलन से जायल हो जाता है, रायल्टी आ जाती है उसके जीवन में। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि जो राजाई घराने हैं, भले अभी राजाई नहीं है लेकिन राजाई घराने तो हैं, और राजाई घराने में जो बच्चे जन्म लेते हैं छोटे हैं लेकिन वो मैनर्स उनके चलन से दिखाई देते हैं, चलना फिरना बात करना, कोई चीज आप दोगे लेंगे नहीं, बहुत रायल रहते हैं, रायल्टी आ गई। तो बाबा के ज्ञान से जीवन इतनी रायल बन गई क्योंकि संपन्न हो गए, किसी में बुद्धि नहीं जाती, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, भले हम लोगों ने दुनिया का ज्ञान नहीं लिया लेकिन दुनिया वालों के बीच में भी अगर हम जाते हैं तो ऐसे लगता है बाबा ने मुझे इसकी भी अथॉरिटी बना दिया, इतना खजाना दिया है, जो नशे से उस सम्मान से उस बात को हम रखते हैं। कई बार ऐसे होता है, हमने खेती नहीं की, एग्रीकल्चर में हम कोई गए नहीं हैं, लेकिन आज अगर किसी वाइस चांसलर्स की सभा में या कई यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रवचन के लिए बुलाते हैं तो बाबा का शुक्रिया करता हूँ कि तीन तीन चार चार वाइस चांसलर एक स्टेज पर हैं, एग्रोनॉमी प्रोफेसर्स हैं और उसके बीच में बाबा हमें कहता तुम बच्चे बोलो, योगी खेती पर बोलो, खेती पर बोलो, कितनी बड़ी बात है। सोचते हैं कि कोई हम दुनिया की पढ़ाई तो नहीं करके आए, लेकिन बाबा ने जो हम बच्चों को पढ़ाया वो कितना श्रेष्ठ खजाना दिया है, कितना महान बनाया है, किसी भी क्षेत्र में, केवल खेती की बात नहीं है, आज हमारे 18-20 प्रभाग बने हैं, हर क्षेत्र का ज्ञान जो बहनों ने कोई सीखा नहीं बाहर जाकर के, कोई पढ़ाई नहीं की लेकिन उसकी विद्वान बन गई, कहाँ से बन गई, मुरली से ही बने ना, बाबा ने मुरली सुना करके हम सबको इतना बुद्धिमान बना दिया, त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, नॉलेजफुल बनाया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। अब देखो भक्ति के अंदर सुदर्शन चक्र कैसे क्या कर रहा है दिखाते हैं, अब श्री कृष्ण के या श्री नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र दे दिया और उसको भी हिंसक बना दिया, उस शब्द में उस अर्थ उसमें अर्थ समाया हुआ स्वदर्शन, ये आत्मा का दर्शन है और आत्मा का दर्शन करने से हिंसा होगी क्या, लेकिन बाबा ने जो स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दिया, समझ दी उससे माया का गला कट गया, विकारों पर जीत हो गई। जब ये स्मृति आ गई कि मेरा अनादि स्वरूप क्या है, मेरा आदि स्वरूप क्या है, और मैंने पार्ट बजाया तो कितना नंबर वन हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया, बहुत महान आत्माएं सतयुग से लेकर के इस चक्र के अंदर खेल खेलने आई। भक्ति के अंदर भी कोई हमने साधारण भक्ति नहीं की, भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ रहे, उसकी भी बाबा ने पहचान दी कि तुम बच्चों ने अव्यभिचारी भक्ति शिव बाबा की शुरू की। पुराने भक्त तुम मेरे हो, अब मैं भक्तों को ही समय मिलता हूँ, साधारण लोगों को नहीं मिलता, आज के भक्तों को नहीं मिलता है, जो देहधारियों की पूजा कर रहे हैं, जो टिवाटों की पूजा कर रहे हैं, जो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, उनको नहीं मिला। लेकिन जो अव्यभिचारी भक्ति करने वाली वो देवी देवताओं की आत्माएं जब द्वापर में वाम मार्ग में आई और शिव बाबा की भक्ति की, फिर अपने ही पूज्य स्वरूप की, अपने ही देवी स्वरूप की पूजा शुरू कर दी, धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन जो देवी देवता साकार में थे उनके ही मंदिर बने, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बने। कितना ऊंचा ज्ञान, लोग कहते हैं शायद इस पर बाबा कहता ना, हम सो सो हम, वो समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, और बाबा ने क्या कहा, हम मनुष्य सो देवता, देवता सो मनुष्य, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। कितना गहरा ज्ञान देकर के बाबा ने बच्चों को ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, भरपूर बनाया। और जिसके पास ये अनमोल खजाना है, कहीं भी चला जाए बेफिक्र बादशाह है। बाबा को तो इतना साकार में नशा था, जब बेगरी पाठ शुरू हुआ यज्ञ के अंदर, धन खत्म, स्थूल धन कुछ भी नहीं है, जो बाबा का अपना था, जिससे इतना दिन यज्ञ चलाया, 300-400 बच्चों की पालना की, आबू में आते हो सब चल संपत्ति अचल संपत्ति सब खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। बच्चे सोच रहे हैं कि बाबा अभी क्या होगा, खाने के लिए नहीं है, दवाई नहीं है, कपड़े नहीं है, इतने सारा बड़ा परिवार संगठन है, मकान का किराया देने का पैसा नहीं है, बहुत कुछ पेपर आए, और बाबा बेफिक्र बादशाह, अरे बच्चे तुम्हारे पास जो खजाना है वो दुनिया के पास है ही नहीं। उस समय अखबारों में लिखाया, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सब चौंक गए, ये क्या हो गया, जिस संस्था में चार आना नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है, और वो कह रहा है हमारे जैसा रिचेस्ट दुनिया में कोई नहीं है, क्या नशा होगा, आप समझ सकते हो किस चीज का नशा था। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे पास ऊंचे से ऊंचा ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है, इस धन के पीछे वो धन क्या है, वो धन अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो। जिनको निश्चय नहीं था, कभी उन्होंने चिंतन नहीं किया कि ये धन है, ये खजाना है हमारे पास, वो तो दुनिया में चले गए, मैं कमा के लाऊं। अरे बाबा के वो धन, विनाशी धन के पीछे तुम भटकोगे, वो तो पीछे पीछे आएगा, उसके पीछे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो कच्चे थे, नहीं समझ पाए, वो दुनिया में चले गए कमाने के लिए। लेकिन जो बिल्कुल संपूर्ण सच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे थे, मरेंगे जिएंगे तेरे दर पर रहे, उन्होंने बाबा की श्रीमत सुनी और मानी। क्या किया, चित्र उठाए, वही जो चार चित्र बने थे, त्रिमूर्ति गोला जिसको षष्ठी चक्र कहते हैं, कल्प वृक्ष जिसको हम झाड़ कहते हैं, यही तीन चित्र थे मूल, त्रिमूर्ति गोला झाड़, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण बना यहाँ, फिर सीढ़ी बनी, ये जो मूल चित्र थे इन्हीं चित्रों के आधार से बाबा ने सेवा करा और उसमें सारा ज्ञान भर दिया। आपको बताऊं, जब ये कल्प वृक्ष का चित्र पहले पहले हमारी बहनों ने जगदीश भाई को सुनाया, जगदीश भाई बहुत विद्वान थे, प्रोफेसर थे और पूरे शास्त्र पढ़े हुए थे, वो जब कोर्स करने के लिए आए तो बहनों को तो कोर्स कराना ही मुश्किल हो गया, हर बात में प्रश्न, एक कोर्स एक दिन का लेसन 5-7-8 दिन भी पूरा नहीं होता, लेकिन हमारी कुंज दादी थी, वो थकती नहीं थी, वही कोर्स कराती थी उसको। दीदी कहे कैसा आदमी है, क्या माथा खराब करता सबका, प्रश्न। जब उसके आगे कल्प वृक्ष का चित्र रखा और उसने देखा और उसको बताया कि इसका बीज कौन है, जो आज बाबा कह रहे ना वृक्षपति, और उस वृक्षपति से कैसे रचना हुई, टालटालियां निकली, पहले तंतुर बना, उसके बाद पत्ते निकले, फिर उसके बाद शाखाएं निकली, उसके बाद उपशाखाएं निकली। वो ज्ञान देख करके चकित हो गया, कहता ये ज्ञान तो कहीं है ही नहीं दुनिया में, किसी भी शास्त्र में नहीं है। और ऐसा ज्ञान जो बीज वृक्ष आदि मध्य अंत टोटल ज्ञान आ जाए एक चित्र के अंदर, ये दिया किसने तुमको, ये कहां से तुमने सीखा, मुझे उसी से मिला दो बस, मैं उसी से मिलूंगा। ये चित्र मनुष्य दे ही नहीं, ये ज्ञान मनुष्य दे ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि में ऐसा ठक से लगा जा करके। आया दीदी के आगे, दीदी मुझे उसको मिलना है जिसने ये ज्ञान दिया है। दीदी कहे कैसे मिलाएंगे इसको, बाबा से भी प्रश्न करेगा तो क्या होगा। बाबा को लिखा, बाबा ऐसा ऐसा एक बच्चा है, बहुत प्रश्न करता है, पूरा ज्ञान में हरेक बात में प्रश्न है, लेकिन कल्प वृक्ष का चित्र देख करके कहता है ये ज्ञान किसने दिया, उसके मिला है, क्या करूं। बोला बच्ची भले उसको बाबा के पास ले आना, लेकिन उसको कहना कि पहले रोज अमृत वेले योग करे और मुरली क्लास में आए। डायरेक्ट बाबा ने यहां से डायरेक्शन दिया। अब योग करने के लिए कमला नगर में एक ही सेंटर दिल्ली में, और रहता था वो सोनीपत में, जो वहां से 3-4 घंटा, कार से भी 2-3 घंटा लगता है। बहनों ने कहा 3:30-4 बजे के बीच में आपको यहाँ योग करने आना है अमृत वेले। जी मैं आऊंगा, लेकिन उससे मिलना है मुझे। जिस दिन आना था साइकिल पर आता था, उसके भाई ने वो साइकिल कहीं ले जा करके चला गया, साइकिल लेके, साइकिल भी नहीं। कितने बजे उठा, तैयार हुआ और वहां से दौड़ लगाई, पैदल दौड़ा, और दौड़ करके करेक्ट 3:30-4 बजे बेल बजा दिया के सेंटर पर। बहने कहे कौन आ गया सवेरे सवेरे, दरवाजा खोल के देखती हूँ खड़ा है, कि बाबा ने कहा है ना कि मुझे योग करना है, मैं आ गया हूं। जब उसने 8-10 दिन योग किया, फिर दीदी ने बाबा को बोला, बाबा वो रोज योग कर रहा है, रोज मुरली सुनने लगा। अच्छा बच्ची ले आओ मधुबन में ले आओ, और लेने ले आओ तो कैसे ले आओ, बाबा उसकी परीक्षा छोड़ता नहीं, वहां से लेके आए। और बाबा एक छोटी सी नेकर पहन के और छोटा सा कपड़े पहन करके, और वो जो रोड कोटने वाला होता ना मूसल, किसी को क्या बोलते हैं, ऐसे कूटते ना रोड पर, वो लेके बाबा खुद कूट रहा था रोड पर, खड़ा हो गया। वो गया देखा, पर्सनैलिटी से तो समझ गया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और बाबा ने ऐसे दृष्टि दी कि अच्छा बच्चू आया ना, जाओ स्नान पानी करो, फिर मिलते, मिलेगा बाबा फिर बाद में, कौन मिलेगा नहीं बताया। अब वो देख करके ही उसको पहचान हो गई कि यही व्यक्ति हो सकता है, भगवान का रथ यही हो सकता है, इतना साधारण है, ये साधारण रूप में मेरी परीक्षा ले रहा है। गया तैयार हुआ, बाबा तैयार होकर के आए, बैठे कमरे में, और ज्यों बाबा के पास आया फट से गोद में चला गया, एक सेकंड में निश्चय हो गया, साक्षात्कार हो गया, शिव बाबा है ये, साकार साधारण नहीं है। बाबा ने बच्चे उठो प्यार किया, स्नेह दिया, आ गया बच्चा, आ गया। बस उसके बाद निश्चय हुआ, बाद में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब लिखने का काम उसको सौंपा बाबा ने, एक पहला पत्र, पहला एक संदेश का पर्चा बनवाया और बना करके जब लेके आया, तो के बाबा ने कहा बच्ची मम्मा को दिखाओ, मम्मा ने उसमें थोड़ी करेक्शन कर दी, फिर बच्ची दादी को दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ। वो शाम तक वो पर्चा घूमता रहा, और हर बार वो फेयर करे, हर बार उसमें करेक्शन लग जाए। रात को बाबा ने पूछा, बच्चे तुमको मैट्रिक बोला था, बन गया? बाबा बनाया तो था, लेकिन इन दादियों ने तो उस मैटर को ही बिगाड़ दिया, पता ही नहीं चलता अभिधा क्या, उसमें कोई सार ही नहीं रहा, हर एक ने अपनी करेक्शन लगा दी। बाबा मुस्कराए, कहते बच्चा पास हो गया, गुस्सा तो नहीं आया? नहीं बाबा, आपने कहा इसने इन्होंने किया, नहीं बच्चे तुमने जो पहले लिखा था ना वही पास हो गया, और अभी तुम जो लिखेगा उसको कोई करेक्शन नहीं करेगा, वरदान दे दिया। उसके बाद कितनी किताबें हिंदी इंग्लिश की लिखी, कितना साहित्य लिखा, ज्ञान का भंडार है, अगर पढ़ो ना साहित्य को, कोई भी प्रश्न ब्राह्मण जीवन में नहीं रह सकते। लास्ट में सिर्फ दो ही इच्छाएं उसकी रह गई थी कि मैंने भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, और एक बात थी जो लास्ट किताब लिखने जा रहा था कि सतयुग में योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे, वो लास्ट किताब उसको बनानी थी। कहती ये दो काम मेरे रह गए, बाबा ने बीच में बुला लिया। आप समझ सकते हो कि कितना ज्ञान सागर का ज्ञान, कहते ना संजय ने सुना और अंधों को धृतराष्ट्र को सुनाया, वो संजय था, गणेश था। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा यहाँ बोल रहे हैं और वहां वो सुन रहा है और लिख रहा है, और अंधों के लिए आईना बना हुआ है। संजय नाम उसको दिया, श्री गणेश नाम दिया। ऐसा ज्ञान, ज्ञान सागर का किसी को समझ में आ जाए उसकी जीवनी बन जाएगी। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, क्या नहीं बाबा ने दिया, और इतना स्पष्ट दिया। और क्या कहा, केवल ये ज्ञान संगम पर ही चलता है, इसके बाद इसकी प्रारब्ध हो जाती है सत्युग त्रेता में, और फिर जब द्वापर में थोड़ा सा होश में आते हैं, दुख शुरू होता है, तो वो अनुभव, वो स्मृतियां जागृत होती हैं और लिखना शुरू करते हैं। वो लिखा जाता है, वो सुनाया नहीं जाता। द्वापर में गीता लिख दिया, दूसरे वेद लिखे, उपनिषद लिखे, जो जिसकी समझ में आया, जो साक्षात्कार हुआ, ऋषि मुनि आए, संत आए, उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, द्वापर में पतन हो गया। अंत में आकर के फिर वही गीता का ज्ञान, नया ज्ञान बाबा दे रहा है, सत्य गीता का ज्ञान, ब्रह्मा मुख से उच्चारण किया जिससे सत्य धर्म की स्थापना हुई, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। ऐसा ऊंचा ज्ञान, जिस ज्ञान से ही सदगति हुई, भक्ति से सदगति नहीं हुई, बाबा ने कहा भक्ति से तो नीचे आए, लेकिन जब ज्ञान मिला, समझ मिल गई, तो आत्मा को गति और सदगति मिल गई। लोग सदगति गति के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, बेचारे दिन रात भट्टी तपस्या करते हैं, एकांतवास करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम्हें कोई हट करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ स्व को पहचानो और उसका दर्शन करो बस। तो सभी स्वदर्शन तो करते हो ना रोज, स्वदर्शन करो, और स्वदर्शन से जो विकारों का माया का गला कटेगा, आप विजयी बन जाओगे, आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, कोई दूसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो चक्र कैसे फिराना, ऐसे नहीं सतयुग में 8 जन्म, दो त्रेता में 12 जन्म, ऐसे नहीं घुमाना है। उसके लिए फिर अव्यक्त बाबा ने और महीनता से स्पष्ट कर दिया, बच्चे 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, यही स्वदर्शन चक्र है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, मेरा अनादि स्वरूप कितना पवित्र है, कैसे मैं अपने पिता के पास घर में रहता हूँ, कितनी पवित्रता की संपूर्ण स्टेज है वहां, कोई हलचल नहीं है, कोई संबंधों का बंधन नहीं, केवल आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। फिर जब नाटक के अंदर आई, पार्ट प्ले करने आई, तो अपनी संपूर्ण योग की बल से, माता पिता का वैराग्य है, उनके अंदर योग का बल नहीं इतना है, क्योंकि विनाश के बाद जो एडवांस पार्टी की आत्माएं पहले जन्म में योग करके गई, वही तो जन्म देंगी आके, उस समय वैराग्य में है, बहुत बड़ा विनाश देखा है, और ऐसे में वो आत्मा योग बल से श्री कृष्ण की आत्मा आई, जन्म लिया करके, फिर दूसरी आत्माएं उतरी, सतयुग का प्रारंभ हुआ। कितना श्रेष्ठ ज्ञान, महान ज्ञान, और उसको अगर हम स्मृति में लाते हैं, तो वर्तमान समय अगर कोई युद्ध भी लगती है, संस्कार बड़े कड़े लगते हैं, ये संस्कार है, ये संस्कार है, इसको मैं कैसे जीत सकता हूं, बाबा ने किसी बच्चे के वर्तमान को नहीं देखा, बाबा जानता है, त्रिकालदर्शी है कि भैया बच्चा ये बनाता है, इसको फिर से बनना है। हम लोग वर्तमान को देखते हैं, ये ऐसे इनके अंदर ये है, इनके अंदर ये, वर्तमान को नहीं देखो। हर एक पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन जिस आत्मा को इतना महान बनाया था और ये फिर से बनने वाला है, यही बनेगा, दूसरा कोई बनने वाला नहीं है। बाबा को हमारे में संपूर्ण निश्चय है, हमारा अपने में निश्चय है, अपना में निश्चय है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मेरी यादगार ये मंदिर मूर्तियां बनी हुई हैं, मेरे दर्शन से लोग प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे मंदिरों से हरेक की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। कितनी पूज्य, कितनी महान आत्मा हम संगम पर बने हैं, बाबा उसकी स्मृति दिलाता है, उस स्वरूप में स्थित कराता है। बार बार स्मृति में लाओ। हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, देखते हैं, भावनाएं कम नहीं है, कई बार भावनाएं कई कई की खत्म हो जाती है, ज्ञान मिल गया, उसका नशा चढ़ गया। दादियों ने भी कहा, नहीं कभी भी मंदिरों में जाना तो डिसरिगार्ड महसूस न करें लोग, कैसे जाते हैं, उनकी बहुत भावनाएं होती है, अरे बड़े सेठ आए हैं, कुछ तो चाहेंगे, कुछ तो देंगे, पुजारी को तो भावना होती है ना। और आप ऐसे सूखे सूखे चले जाओ, प्रसाद भी नहीं लो, पैसा भी नहीं चढ़ाओ, तो उनको बड़ी इंसल्ट महसूस होती है, वो दुआ और आशीर्वाद देने की बजाय गालियां देना शुरू कर देते हैं। बाबा ने नहीं सिखाया, हमारे मंदिर है, हमारी यादगारें हैं, हमारे मंदिरों से लोगों की इतनी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, आपकी भावनाएं कम क्यों हो गई, ऊंची रहनी चाहिए। अगर मान लो आपने मंदिर में जाके 10-15-20 रुपया चढ़ा भी दिया तो आपका क्या चला जाएगा। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कहे नास्तिक लोग आ गए, भावना लेकर के जाओ, भावना का भाड़ा मिलता है, भक्तों की भावना का ही तो भाड़ा है। हम जानते हैं नॉलेजफुल बने हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि अहंकार आ जाए, समझ से, बहुत रिस्पेक्ट से देखो मंदिर में। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर कोई नमस्ते करता है तो आप नमस्ते नहीं करोगे क्या, झुकने में क्या जाता है, जैसे वो सामने से कर रहा है ऐसे आप भी करो। तो बाबा ने सब कुछ सिखाया, ये भी तो ज्ञान दिया ना, समझ दी। तो हम सब स्व का दर्शन करके अपने आप को कितना श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। बाबा ने अपने अनादि काल की स्मृति दिलाई, फिर आदि देवताओं के काल की स्मृति दिलाई, फिर भक्ति काल में पूज्य स्वरूप की स्मृति दिलाई, फिर संगम पर हमारे ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति दिलाई, और ब्राह्मण जब संपन्नता को प्राप्त होते हैं तो फरिश्ता स्वरूप की स्मृति दिलाई। यही तो पांच स्वरूप हैं, और इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करने से आत्मा बिल्कुल पवित्र स्वच्छ बन जाती है। जितनी उसकी अंदर अलाय मिक्स हुई है, कमी कमजोरियां आई हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। ये स्वदर्शन चक्र है, इसको फिराते रहो, इसका चिंतन करो, और इसे इतना अच्छा लगता है कि हमारे पास इतना खजाना है। चार सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाए, ज्यादा तो कोई हार्ड वर्क नहीं दे दिया, चार सब्जेक्ट पढ़ाए, और जिन्होंने इसी चारों सब्जेक्ट को यथार्थ पढ़ करके अपने जीवन में उतार लिया, तो कहता है देखो मुरली वही है, एक मुरली से राजाओं का राजा तावसी तख्त पर बैठ जाता है जाके, और दूसरा दास दासी नौकर चाकर बन जाता है। द्वापर में राजाई प्राप्त करने का साधन था, बोलो माताएं बहने, द्वापर की राजाई कैसे मिली, दान पुण्य से। लेकिन सत्युग त्रेता की राजाई का आधार संगम की पढ़ाई है, और यही पढ़ाई जो भगवान ने पढ़ाई, और कोई दूसरी पढ़ाई नहीं है, दूसरी कोई क्लासेस सुन लिया, दूसरे कुछ किसी की किताबें पढ़ लिया, पढ़ाई केवल मुरली है, और मुरली के अंदर केवल बाबा ने चार सब्जेक्ट पढ़ाए। चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को अगर हमने समझाया यथार्थ रीति से, माना हमने पूरे सब खजानों को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। ज्ञान किस लिए दिया, सुनने सुनाने के लिए, ज्ञान समझ है, और जो समझ से चलता है, सोच समझ कर बोलना, सोच समझ के करना, सोचने के पहले सोचना मेरे साथ क्या जाएगा, कर लिया बोल दिया फिर सोचते रहो नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल गया, निकल गया, तो ज्ञानी है क्या? वो तो अज्ञानी हो गया, पश्चाताप कर रहा है। ज्ञानी कभी पश्चाताप नहीं करेगा। उसका अपने ऊपर इतना कंट्रोल है, एक एक बोल पर, एक एक कर्म पर, एक एक संकल्प पर भी कंट्रोल है कि क्या ये ब्राह्मण जीवन की श्रीमत के अनुसार है या ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। बहुत फुल अटेंशन जाता है ज्ञानी आत्मा का। और अगर वो ज्ञानी सचमुच उसने ज्ञान का चिंतन करके उसको स्वरूप में लाया है, कभी भी किसी भी बंधन में वो बंध ही नहीं सकता। सबसे बड़ा बंधन इस समय है कर्म बंधन, सेवाओं का बंधन। जिस प्रकार की सेवा मिली, समझते यही मेरी सेवा है, और जहां पर मेरा पन आ गया वो बंधन शुरू हो गया। कार्य मिले हैं, बाबा ने दिए हैं, सेवा दी है, भाग्य है मेरा, लेकिन यही सेवा मेरी सेवा है, जहां पर वो मैं पन आया, आकर्षण आई उस सेवा की, वो बंधन शुरू हो गया। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जो कर्म करे लेकिन कर्तापन के भान से मुक्त रहे। कराने वाले ने कराया, शुक्रिया बाबा आपका। कभी भी अन्याय मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरी बुद्धि की कमाल है, ये वरदान बना दिया, ये स्लोगन बना दिया, मेरी बुद्धि है क्या? बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है। जिस बच्चे से भी कराना चाहे करा सकता है, ये मेरा भाग्य है जो मुझे यूज कर लिया उसने। इसलिए बाबा ने कहा मेरे बच्चों को इतनी सब सेवाएं करते हुए भी ये स्मृति सदा रखनी है, मैं निमित्त हूं। दादियों ने इस निमित्तपन के भाव को इतना पक्का किया था, कोई भी बात कहो हम तो निमित्त है, बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, वो कराने वाला है, हम लोगों क्या, उसने हमें चांस दिया है, मेरा भाग्य है, मैं नहीं करूंगा, दूसरा कोई कर लेगा, लेकिन हमें चांस दिया और हमने अच्छी तरह से किया, हमारा भाग्य बन गया। तो दादियों ने अपने इस पार्ट में, मैंने देखा 69 से लेकर के जब बाबा अव्यक्त हो गए और दीदी दादी के ऊपर जवाबदारी आई, कितनी सेवाएं किया, लेकिन उसका मूल कारण था वृद्धि और विस्तार का। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बड़ी हूं, मैं हेड हूं, मैं संस्था चला रही, नहीं तो बाबा दीदी दादी के सामने बाबा के लौकिक संबंधी उनसे भी समझदार बैठे थे। निर्मल संता दादी थी, ब्रजेंद्रा दादी थी, सब सामने थे बाबा के। बाबा की दूसरी चचेरी बहू थी संतरी दादी, जो बहुत अच्छी ध्यानी आत्मा थी, ट्रांस में जाती थी, बहुत स्पष्ट मैसेज लाती थी। सब सभा में बैठे हैं। दादी प्रकाश मणि बॉम्बे की सेवा पर थी, दीदी मनमोहिनी दिल्ली की सेवा पर थी। दीदी को तो मम्मा के सामने ही बाबा ने बुला करके मम्मा के बाद रख दिया। ये कमरा है ना, जो दीदी का कमरा हम कहते हैं, ऑफिस के सामने ऑफिस बना हुआ भी, यहाँ पर ही मम्मा रही, यहाँ ही दीदी रही। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी सामने नहीं थी, दादी सामने थे। और जब बाबा को 21 तारीख भोग लगाया गया और बाबा आए, गुलजार दादी के तन में प्रवेश हुए, दीदी दादी को दृष्टि दे के सामने बुलाया और उनके ऊपर कलश रखा, ये दोनों बच्चियां भी यज्ञ का आगे का कार्य देखेंगी। ये नहीं कहा प्रशासक बन गई, दीदी तो है ही, दादी इनको मदद करेंगी। दीदी दादी को निमित्त बनाया कि जहां जरूरत हो, जो कार्य हो, पहले ये बैठी है निमित्त, इनसे बात करना, इनसे पूछना। और इनको अगर नहीं समझ में आता है तो बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा साथ है। केवल ड्रेस और एड्रेस चेंज किया है, मिट्टी की ड्रेस से लाइट की ड्रेस में गया, इस आबू की ड्रेस से वतन की एड्रेस पे चला गया, बाबा कहीं नहीं गया है। बच्चे जब कहेंगे बाबा आएगा, डायरेक्शन मंगाएंगे, कोई संदेश लेंगे तो संदेश आएगा। और दीदी दादी ने 69-70 में बाबा को इतना यूज किया है, इतना यूज किया कि हर पल एक एक बात पूछी, ये करना बाबा, ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना है इसका, ये क्या। बाबा ने 1-2 साल इतना इनको गाइड किया, और उसके बाद ये दीदी दादी ने एक होकर के सबको सम्मान दे करके, सबको आगे रख करके यज्ञ को संभाला और यज्ञ का विस्तार किया। हम लोगों को उसी में समर्पित होने का चांस मिला। लेकिन दीदी दादी की क्वालिटी जो थी, जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा, सबको सम्मान देने वाली आत्मा, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता होकर के रहना, कभी भी अपनी बड़ाई स्वीकार नहीं करना, ये निमित्तपन का भाव ज्ञानित्व आत्मा में आता है। बाबा ने ज्ञान की सब्जेक्ट पढ़ा करके हम सबको इस समय कर्म बंधन से, हर प्रकार के बंधन से फ्री कर दिया। ज्ञान है और बंध रहे हैं, तो ज्ञान नहीं कहते, बंधते तुम पूरे कल्प में आए। जब से हमने शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा, इधर उधर का पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कितने बंधनों में हम बंध गए, और बाबा ज्ञान दे करके सबको बंधन मुक्त बना रहा है। बच्चे अब चलने का समय है, बंधना नहीं, नया बंधन बनाना नहीं, जो पुराने बने हैं वो क्या करना, चुक तो करो, काटो, लगाओ कैंची, ज्ञान योग की कैंची से पुराने बंधन काट दो, और नया न बने उस पर अटेंशन देना। नया बनता कैसे है बोलो, सुस्ते तो नहीं आ रही है? बोलो कैसे बनता है, कोई तो बताओ कैसे बनता है, संकल्पों से, संकल्पों से तो नहीं बनता है भाई लोग, बोलो दो चीजों से बनता है, दो बातों से बनता है। यदि किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर हम विशेष आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए, ये बहुत अच्छे है, लेन देन शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई, उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, बंधन बन गया। लगाव झुकाव बंधन बनाता है। एक तरफ बहुत अच्छे हैं, बहुत विशेष हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। आजकल कोई सेवा करता है, धन से सेवा करता है, ये बड़े व्यक्ति अच्छे हैं। कोई गुणवान है, हर बात में हाजी करता है, मदद करता है, ये बड़े अच्छे हैं। अरे एक अच्छा है तो दूसरे खराब हैं क्या? किसी एक को अच्छा समझ करके उसकी आकर्षण में आकर्षित हो जाना, माना अपना बंधन क्रिएट कर लेना, बंधन खुद बना लिया। सब अच्छे हैं, बाबा ने हमें बेहद में रखा है, कोई विशेष अच्छा लगा, माना हमारा बंधन हुआ। और दूसरा अगर मान लो किसी से न बनी, अनबनी हो गई, टकराव हो गया, पर चिंतन शुरू हुआ, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष आई, वहां भी बंधन शुरू हो गया, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, ये अच्छा ही नहीं लगता, ये बेकार है। बाबा कहता ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। जैसे धन वाले के प्रति हमारा आकर्षण है, स्नेह है, ऐसे जो बाबा के गरीब बच्चे, कितना बाबा प्यार करता है, कितनी मुरलियों में प्यार करता है, भोला बच्चा बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा लगता है बाबा को, ये गरीब है, अरे बच्चा अच्छा है, तेरे पास नहीं है ना तो पाप कम होंगे तेरे से, नहीं पढ़ा है अच्छा है, तेरे को भूलना नहीं पड़ेगा। बाबा ने सबको समान दृष्टि से देखा, ये ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण है। योग सिखाया, इतना पावरफुल योग, जिस योग से हमारे किए हुए पाप तक धो जाए, विकर्म विनाश हो जाए, संस्कार परिवर्तन हो जाए, आत्मा पावन बने, सतो प्रधान बने, उसके लिए बाबा कहता बच्चे तुम मेरे से कनेक्शन जोड़ो, कनेक्ट हो जाओ, तो मेरी याद में रहो, तुम्हारे सब पाप खत्म हो जाएंगे। योग से आत्मा सत्व प्रधान बन रही है। दिव्य गुण सिखाए, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, दिव्य गुणों के खजाने से संपन्न, ये सब खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, गुणों का खजाना, गुणवान बना दिया। और उस गुणों की धारणा से, भले उसमें हमें सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कितनी परीक्षाएं आती हैं, हर माताओं को अनुभव है, सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों पर आती है, पवित्रता के लिए, खान पान के लिए, कितने टकराव हो जाते, कितनी झगड़े हो जाते घर घर में, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर प्यार से कहा बच्चे धरत परिये धर्म न छोड़िए, मर जाना मिट जाना, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से हटना नहीं, सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, और उस धर्म की स्थापना के लिए लोगों ने कितना सहन किया अपने इस हद के धर्म में। आज जब मुगल लोग आए तो हमारे भारत वालों ने उनका कितना सामना किया, और विशेष करके जो हमारे सिख धर्म में लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, जब ये मुगलों का वार हो रहा था उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए। बहुत युद्ध करना पड़ा, यहां तक भी मैं नादेड़ गया था, नादेड़ में इनका एक गुरुद्वारा है, वहां पर वो लास्ट उनका यादगार बना हुआ है, उनके दो बच्चों को जिंदा दीवाल के अंदर चुन दिया लोगों ने, जरा आह नहीं किया उन्होंने, तुम ये धर्म छोड़ दो बस तुमको छोड़ देंगे। नहीं, धर्म नहीं छोड़ सकते, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। उनका एक कमरा बना हुआ है जिसमें उन बच्चों को ऐसे ही कीलों पर ऐसे दीवाल के अंदर चुन दिया गया, धर्म के नाम पर उन्होंने प्राण दे दिए। और हम किसके स्थापना के निमित्त हैं, किसलिए? बाबा कह रहा पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के बल से सतयुग आने वाला है, सत्य धर्म स्थापन होगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की नींव जो संगम पर पड़ रही है, उसकी स्थापना में अगर हमें कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, कोई बात नहीं बच्चे, मेरे नाम पर कर लो, ये बहुत बड़ा तुमको योगदान है, बाबा को योगदान है, सहयोग है, नई दुनिया बनाने में सहयोग है। तो दिव्य गुणों की धारणा, चौथा जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा सुख देने के लिए है, सेवा दिखाने के लिए नहीं है। सेवा के पीछे हम एक दूसरे की स्थिति को नहीं बिगाड़ दें। कई बार हम सेवा करने जाते हैं, तेरी एरिया मेरी एरिया, ऐसा झगड़ जाते हैं, जो इसका मुंह इधर उसका मुंह इधर, एक शहर में रहते बात नहीं करते, ये सेवा है, कितनी डिसर्विस है। बाबा को किस लोग किस नजर से लोग देखते रहे हैं, आज इतने बड़े संत आए, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ शांतिवन में, हर एक के मुख से निकला कि यहां की एकता जैसी कहीं एकता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर देख ले जाके तो क्या होगा। बहुत ध्यान देना, सेवा के हम निमित्त हैं, और सेवा उसको कहते हैं जहां सुख दिया जाए सुख लिया जाए, न दुख दे न दुख ले, दिखावे की थोड़ी सेवा है। सेवा बाबा ने दी है सबको, बाबा का परिचय देना, संदेश देना, बाबा से कनेक्शन जुड़ाना, न कि अपने से जुड़ा लेना, अपना नाम करना, अपना शान दिखाना। ये चारों सब्जेक्ट अगर हमने बाबा की मुरली से ठीक पढ़ी हैं, माना हमारा खजाना भरपूर है, संपन्न है, और हम सब खजानों के मालिक हैं, कोई खजाना की कमी नहीं। हम लोगों को तो अभी हद तक अनुभव है किसी चीज की कमी नहीं बाबा ने दी, संगम पर हम इतने संपन्न हैं, भरपूर हैं। संकल्प उठे कि इस चीज की आवश्यकता है तो पता नहीं पहले से आ जाती, माला माल बनाया बाबा ने, सतयुग में क्या होगा पता नहीं, लेकिन संगम के अनुभव हैं हम लोगों के। कहीं भी जाओ, कैसी भी जाओ, कैसे भी रहो, आवश्यकता है वो चीज अपने आप आ जाती, मांगना नहीं पड़ता। संकल्प इतने शुद्ध है, इतने पवित्र, अपने लिए क्या चाहिए? भगवान दो रोटी खिलाएगा, दो कपड़े पहनाएगा, इसके लिए हमें कोई पाप करने की जरूरत है क्या? कोई दे न दे, हम लोग सेवा करने जाते हैं, सेंटर्स पर जाते हैं, कौन क्या देगा, हम कोई मांगते हैं क्या? जो देना है यज्ञ कर देगा, हमको क्या, हमको क्या चाहिए भाई? बाबा के लिए दे, बाबा के यज्ञ को देखे। इतनी अनासक्त वृत्ति बाबा ने बना दी। आप अगर ज्ञानी तो आत्मा है तो अनासक्त हैं, वैरागी हैं, उपराम हैं, न्यारे हैं, साक्षी हैं। ये सारे गुण अगर आ गए तो सबके बीच में रहते हुए मेरे जैसा साहूकार कोई नहीं, ये क्या चाहिए? कहते हैं ना, सब धनों में श्रेष्ठ धन संतोष धन। कोई करोड़पति अरबपति है लेकिन संतुष्टता नहीं है, क्या फायदा? रोड पर घूम रहा है, समझता हरी इसके पास इतना है, दूसरों से भेंट करता है। और कई गरीब है, बाबा कई बार कहता है देखो हमारे भील कितने अच्छे हैं, दिन भर कमाते हैं, रात को रोटला और मिर्ची खाते हैं और डांस करते करते सो जाते हैं, उनको गोली लेनी पड़ती है क्या? पैसे वाले तो गोली पर चल रहे हैं, कमा लिया खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, नींद नहीं आती, कोई चोर ना आ जाए, कोई इनकम टैक्स वाला ना आ जाए, कितना भय लगा रहता है। बाबा कहता है वाह गरीबी वाह, आंतरिक स्थितियों में हम इतने संपन्न हैं, भरपूर हैं, और ऊपर से भले बाबा ने कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा है, हल्के हैं, लाइट हैं। ये है हमारी साहूकारी, ये हमारे खजाने, और ऐसे खजानों से सदा संपन्न रहो, चेहरे से दिखाई दे सब कुछ इसको मिला है। एक बार मुझे एक मॉल में ले गए, विदेश में गया था, बहनों की बड़ी इच्छा थी कुछ तो ले जाए मधुबन के लिए या अपने लिए, बहुत बड़ा मॉल था मैनचेस्टर का, तो बहन सुबह से ले गई कि चलो भाई साहब को कुछ तो दिखाएं, सब नई नई चीजें, नई नई साइंस की साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन, वो दिखाती रही, भाई साहब ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, मैं सिर्फ देखता रहा, हमने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लास्ट में कहती कुछ तो भाई साहब ले लो ना, मैं कहा क्या ले लूं बहन जी, मेरे काम का नहीं कुछ भी, प्लीज ले लो कुछ। सुबह से शाम तक करीब 6 घंटा हमको उस मॉल में उसने घुमाया। मैंने कहा लोग आते हैं अपना जितना पैसा लेके आते हैं मॉल में देके आते हैं, ये ले लो ये बहुत अच्छा, ये ले लो बहुत अच्छा, और मैं लास्ट में जब कुछ नहीं लिया तो बहन गई मेरे लिए 8-10 जोड़ी जुराब ले आई, भाई साहब ये तो दे देना, जाके बांट देना, आप कुछ भी नहीं ले रहे हो। तो क्या ये मेरे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, मेरे पास सब कुछ बाबा ने दिया है, मधुबन में किस चीज की कमी है तेरे मॉल में जाकर के मैं खरीदूं इतनी महंगी चीजें, ये नहीं चाहिए। इस संगम पर जिसके पास ज्ञान रतन है उसके जैसा धनवान मालामाल कोई नहीं है, और उसके कारण अंदर की जो स्थिति है वो है इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा है नहीं हद की, न मान चाहिए, न नाम चाहिए, न पद चाहिए, न सीट चाहिए, न धन चाहिए, क्या चाहिए, संगम पर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, इतना सम्मान दिया है कौन देगा व्यक्ति, क्यों मांगे किसी से, ये मान नहीं देते, प्यार से बात नहीं करते, करें या न करें हम अपनी तरफ से करते चले, हम देंगे अपने आप रिटर्न मिलेगा, हम मांगे क्यों। खूब दान करते रहो, बाबा ने संगम पर एक एक बच्चे को मास्टर दाता बनाया है, मास्टर दाता बन करके रहो, सब बाबा दे रहा है, एक से ले रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कोई व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, आप दाता बन के रहो आपके पास सब भरपूर हो जाएगा। दादियां सदा दाता बन के रही, यज्ञ को भर दिया, मांगा नहीं किसी से, हम सभी भी मास्टर दाता हैं, देते चलो, दृष्टि से दो, बोल से दो, जो आता है उसको स्नेह दो, सहयोग दो, सम्मान दो, जो बाबा ने गुण दिए हैं दान करो, आपके गुण भर जाएंगे, धन दिए धन ना खूटे, ये धन बांटो वो धन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समय हो गया है, ओम शांति। चलो 5 मिनट के लिए शरीर ही बन सकते हैं।
ओम शांति। सब माला माल हो गए, मॉल में जाने की तो जरूरत नहीं ना, भाई साहब ने मॉल का अनुभव भी सुनाया और इतना माला माल कर दिया, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सेवा के द्वारा दुआओं का खजाना, कितने खजाने। मुरली क्या है हमारे लिए, मुरली तो खजाना है, मुरली सांस है, मुरली गंगा जल है, मुरली के लिए तो क्या नहीं कहेंगे, सब कुछ प्राप्ति मुरली के माध्यम से ही। एक एग्जाम्पल भाई साहब ने दिया कि कैसे मुरली के द्वारा अपने जीवन को बनाया, चाहे दुनिया की पढ़ाई हमने नहीं पढ़ी लेकिन भगवान के द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई, दुनिया के साथ हम टक्कर लेना चाहे तो ले सकते, नहीं ले सकते, कहीं भी हम हार नहीं खाएंगे, इतनी अथॉरिटी वाला बनाए अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से। तो ऐसे श्रेष्ठ खान से हम सदा माला माल हो करके सदा मुरली के बारे में कभी भी डिसरिगार्ड नहीं, तो ऐसे मुरली का चिंतन सदैव करते रहेंगे, एक दिन भी ऐसी मुरली का पक्का हा? सभी ऐसा पक्का भाई साहब, सभी संकल्प ले रहे हैं, एक दिन भी एक संकल्प और लेना है, बताइएगा।
जब से कोविड आया ना तब से एक माया आई है, समझ गए, ऑनलाइन सुनने की बहुत बड़ी माया है ये, बहुत गुप्त रूप में वार कर रही है। हम तो मधुबन की मुरली सुनते हैं, हम तो वारसी की सुन लेते हैं, सेवा केंद्र के वातावरण से वंचित हैं। जहाँ पर डायरेक्ट भगवान की किरणें हैं, जहाँ पर पवित्र बहनें बहुत स्नेह से मनन चिंतन करके मुरली रख रही सुना रही हैं, जहाँ पर उनके हाथों की दृष्टि के साथ टोली भी मिल जाती है, बाबा के घर से वंचित हैं। इसलिए सभी संकल्प करो कि बाबा की मुरली मेरे को केवल सेंटर पर जाके सुननी है। एक बार भी जाना जरूर है सेंटर पर, ऐसे नहीं हम नहीं गए तो क्या हमने मुरली तो सुन ली, बाबा के रजिस्टर में अब्सेंट है। ऑनलाइन सुनने वाले थोड़ा हाथ उठाओ, नहीं उठाएंगे अभी, थोड़े तो उठा रहे हैं। सुनो भले, जो कोई बीमारी है, कोई बहुत जरूरी काम है, अच्छा है, लेकिन अलबेलेपन से, आलस के कारण, बहानेबाजी के कारण अगर सेंटर पर नहीं आ रहे हैं तो अपने ऊपर बहुत बोझ आ रहे हैं। तो आप सभी एक संकल्प करो कि मुरली सेवा केंद्र पर जाके बहनों के मुख से जो सुनाई जा रही है बाबा की मुरली, हमें सेंटर पर सुननी है। कर सकते हो? जो करेंगे हाथ उठाओ, सब यहाँ मधुबन से कुछ तो संकल्प लेंगे ना। ठीक है, बहुत अच्छा, ओके।
हाँ जी, दीदी बैठे, ओम शांति करे बैठे। जो ऑनलाइन मुरली सुनने वाले हैं, वो खाना भी ऑनलाइन खाना, ठीक बात है? नहीं हाँ, मुरली जब ऑनलाइन हो सकती है तो खाना भी क्या होना चाहिए, ऑनलाइन ही होना चाहिए, संभव है? नहीं नहीं, देखिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भोजन कहते हैं, नहीं नहीं, ऑफलाइन चाहिए भोजन। तो जैसे बाबा साहब ने अभी दृढ़ संकल्प, आज की मुरली के आज इस क्लास में हम सब दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि इस माया को कैसे, माया एंटर करती, माध्यम क्या, बल मुरली के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे घर में आ गई और अपना जाल बिछा करके और बहुत कुछ लेकर के आती है माया। इसीलिए मुरली के माध्यम से आकर के उसके जाल को बिछाने न दे, इस बात का हम सभी अटेंशन देकर भाई साहब के साथ संकल्प दिला देंगे, भाई साहब हम जरूर सेंटर पे ही जा करके, मजबूरी, तबीयत ठीक नहीं, कोई कारण हो जाए तो दीदी से छुट्टी लेकर के, बाकी तो कंपलसरी मधुबन जाकर सेंटर पे जाकर के ही मुरली सुनेंगे। खास भाई साहब योग का संकल्प दे रहे हैं, क्या आपने कहा ना योग के लिए अश्वरी बने। हाँ जी, चलिए 3 मिनट बाबा को याद करेंगे, विशेष दीदी के लिए 2 शब्द बोलना हो दीदी के लिए।
हमारी आदरणीय कमलेश दीदी इतनी बड़ी आयु में भी कितनी हिम्मतवान है, इतनी हिम्मत है जो साल में कितनी बार मधुबन में आती है। बाबा इनको और सतायु बनाए, हम सभी बहुत बहुत दिल से अपने स्नेह की दुआएं देते हैं। हम तो जब जाते हैं उड़ीसा में तो इनसे बिना मिले नहीं आते, और यहाँ आते रहते बीच बीच में, तो हमने देखा, हमने सोचा सुलोचना बहन आई होगी, लेकिन तो कमलेश दीदी भी बैठी हुई है, बहुत अच्छा है। आपकी कितनी अच्छी फुलवाड़ी है, हैं? खुशी होती है ना, आपकी है, बाबा की है। ओके, ओम शांति। चलो 3 मिनट योग करके।
चाहे अब जब से तुमको जाना है, दिल और नहीं कुछ चाहे अब जब से तुमको जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं सुख पाऊं मैं। करके तुमको ओ बाबा अंदर का सुख पाऊं मैं।
मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही
भरती है अनोखा बल मुझ में।
अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में।
फिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में।
अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में।
तू ही मेरा खजाना है।